Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum hamesha ki tarah desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par nazar dalenge aur saath hi pramukh khabron par hum charcha bhi karenge. Charcha ke liye aaj hamare saath studio mein aamantrit hain aarthik vishleshak Prakash Chawla. Prakash ji, namaskar. Karyakram mein aapka swagat hai.
Namaskar.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डेंग.
थैंक यू अमरीश. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एक्सटेंड लॉसेस फॉर सेकंड स्ट्रेट सेशन. सेंसेक्स क्लोजेस एट 80,684. निफ्टी शेड्स ओवर 300 पॉइंट्स. US Federal Reserve's meeting on rate cut decision to begin today, and crude oil prices slip. Brent crude trades at $73.34.
घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 80,684 अंकों पर बंद हुआ. निफ्टी में 300 अंकों से अधिक की गिरावट दिखाई दी. ब्याज दरों में कटौती के बारे में फैसला लेने के लिए अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक आज होने वाली है. और कच्चे तेल के मूल्यों में कमी आई. ब्रेंट क्रूड $73.34 पर कारोबार कर रहा था. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और सूचकांक लगभग 1.3% लुढ़क गए. 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1,064 अंकों की गिरावट के साथ 80,684 अंकों पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 332 अंक गिरकर 24,336 अंकों पर पहुंच गया. बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट का दौर दिखाई दिया. मिड कैप सूचकांक 0.6% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट देखी गई.
Benchmark domestic equity indices today ended around 1.3% lower, extending their losing streak for the second straight session. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, tanked 1,064 points to close at 80,684. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 332 points to end at 24,336. The broader market indices at BSE also logged losses. Mid-cap index fell over 0.6% and the small cap index lost over 0.5%. In the Sensex index, all 30 companies ended in negative territory. In the top laggards, Bharti Airtel slumped over 2.8%, Indus Inc. Bank lost nearly 2.5%, and JSW Steel dropped 2.4%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended with losses. Among the top laggards, telecommunication lost over 2%, metal dipped over 1.7%, auto shed 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,576 companies advanced and 2,442 declined, while 89 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 122 companies hit their 52-week high, while 17 hit their 52-week low.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 84.90 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106.98 पर कारोबार कर रहा था. प्रकाश जी, शेयर बाजार में हम देख रहे हैं कि फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ है, जबकि पिछले हफ्ते लगातार बाजार ऊपर जा रहा था, लेकिन कल भी गिरावट हुई और आज काफी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दी। आपके हिसाब से कौन सा ऐसे कारण है जो अचानक इतना मेजर फॉल बाजार में दिखाई दिया?
मार्केट को सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है ना, वो दिशा मिल रही। काफी हफ्ते हो गए इस बात को
जी।
दो दिन ऊपर चढ़ता है या एक हफ्ता ऊपर चढ़ता है, फिर अगले हफ्ते धड़ाम से नीचे गिरता है। तो ये जो सूरत हाल है ये बना हुआ है और कई इसके कारण है। तो अब जैसे आज जब काफी गिरावट आई, अब कल क्या होगा? हालांकि फ्यूचर्स जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां वीकनेस है, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसमें ग्लोबल रीजंस हैं और यहाँ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मार्केट के सामने वो है कि हम लोगों को, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हैड ए टू मच ऑफ ए रन, बहुत दौड़ लिया था मार्केट, तो उसको थोड़ा सा सांस लेना चाहिए। ये मार्केट के ऑपरेटर्स की फीलिंग है कि अभी थोड़ा उसमें काफी चीजों से ये चीज इंडिकेट होती है। और सबसे बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो जो है वैल्यूएशन के मुकाबले पीछे रही नजर आती मार्केट के ऑपरेटर्स को, मार्केट के इन्वेस्टर्स को। तो दे नीड टू काइंड ऑफ रीबैलेंस देयर इक्वेशन बिटवीन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड द वैल्यूएशंस प्रिवेलिंग इन द मार्केट प्लेस एज ऑफ नाउ। दैट इज व्हाई सम काइंड ऑफ अ चर्निंग इज टेकिंग प्लेस, सम काइंड ऑफ रीबैलेंसिंग इज टेकिंग प्लेस। सो दिस प्रेशर विल, दिस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशंस इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर फॉर सम मोर टाइम।
All right. If you say it's going to be like that for some more time, is this the right time to buy shares, invest in shares for those who want to invest, or should people wait for it to go a little more deeper?
Well, actually, you know, they say nobody can say when is the right time to buy. Any time could be right time to buy, but you need to be a little more prudent when you are choosing your bet. Prudent in the sense that you would have seen shares which have run too much ahead of their earnings. And a person who is investing now, Indian market, Indian retail investors, investors have become mature enough now. They know what the balance sheet is all about. They know they are not a novice anymore. They know what the corporate earnings are. So they should exercise their mind. They can do it in a staggered way. Rather than investing in one go, they can go in a staggered way, watch the behavior of particular stocks, don't go by the headlines, so to speak.
Prakash ji, jo bazaar ka hal hum lagatar dekh rahe hain aur aaj bhi humne dekha, to jitni global uncertainty hai duniya mein, jis tarah ki anishchitta bani hui hai, aur khaas taur pe agar hum America ka zikr kare ki agle mahine Donald Trump ko rashtrapati pad ka bhar grahan karna hai, aur abhi American Federal Reserve ki bhi मीटिंग होनी है जिसमें जो इंटरेस्ट कट के बारे में फैसला होगा, तो ये सारी चिंताएं भी कहीं बाजार पे आपको लगता है असर डाल रही हैं?
यही असर डाल रही हैं
जी।
एक्चुअली क्या होता है बाजार में, कुछ एक ना बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कॉर्पोरेट अर्निंग्स का वीजा वी वैल्यूएशन का
जी,
ये एक फंडामेंटल रीजन है। अब इसके इर्द गिर्द एक, एक, एक ट्रिगर्स होते हैं रोज मरा के उस पे। अभी जो ट्रिगर्स है, जो कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट्स में, इकोनॉमिस्ट में, इवन काफी कुछ मुल्क हैं जो पॉलिसी मेकर्स के सामने भी हैं कि ट्रंप साहब जब आएंगे जनवरी में, लेटर पार्ट ऑफ जनवरी, तो उन्होंने, उनके कुछ बयान ऐसे आए हैं कि जिससे लोगों को ये कंसर्न है कि वो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब कि आप ट्रेड को कहीं कहीं बैरियर्स कर रहे हो। तो ग्लोबल ट्रेड जब बैरियर फेस करता है तो उसकी कंसर्न जाहिर बात है जो एक्सपोर्टर्स कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, इवन हम, हमारा भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ٹریڈ اینڈ مائنڈ یو ٹریڈ از ون آف دا بگیسٹ ڈرائیورز آف دا اکانومک گروتھ
وین وی ٹاک آف ٹریڈ کیپیکس ایکسپینڈیچر ہیز ڈیکریزڈ ا بٹ اینڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیز وائڈنڈ ٹو ا ریکارڈ ہائی ہیز دیٹ آلسو بین این ہیز انفلوئنس دا مارکیٹس یو تھنک
آئی ڈونٹ تھنک ٹوڈیز ڈیولپمنٹس ہیو گاٹ مچ بیئرنگ فرام دی ٹریڈ ڈیفیسٹ ان اینی وے In any case, the merchandise trade has been under pressure. The good thing is that to make up for the merchandise trade deficit, services exports are making up the deficit there. Yeah. Our service exports have really overtaken the merchandise trade, which is coming to the rescue of our current account or the trade account balance, which is a good kind of a development. And so, yes, it could be one of the reasons, but it is not a reason which really would impact. Right now, what is driving the market down is the fundamental reasons, which is valuation, and overall global economic concerns, as I discussed.
اور جو کنفلکٹس جس طرح کے چل رہے ہیں اب جیسے آپ نے آرتھک جو کنسرنس کی بات کی بٹ اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب نیتن یاہو کی ٹرمپ کے ساتھ جو بھی چرچا ہوئی ہے اور سیریا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں تو جیسے ہمیں کچھ سمے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد صورت کچھ بدلے اور یہ جتنے کنفلکٹس ہو لیکن وہ کنفلکٹس اسی کہیں نہ کہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا بھی ایک آرتھک استھتی پر امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے ہو رہا ہے
نہیں امریش جی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے
جی
یہ اوور نائٹ تو ٹھیک ہوتی نہیں اب وہ ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین میں کہا کہ میں ترنت ٹھیک کر دوں گا
جی
لیکن ریئل لائف ایسے نہیں ہوتی نا ریئل لائف میں تو نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں سو ریئل لائف میں جیو کو پولیٹیکل سچویشن تو برقرار ہے پرابلم تو ہیں لیکن اب وہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے اپنی ساری ٹیم تو بنا لی ہے وہ جو ٹیم بنائی ہے پہلے تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں ان کا انالیسز کر رہے ہیں مارکیٹ بھی انالیسز کر رہی ہے تو یہ جدوجہد چل رہی ہے اور اس کے صورت انسرٹنٹی اسی چیز کا تو نام ہے نا بھائی فلاں آدمی کو انہوں نے سلیکٹ کیا تو کس طرح سے وہ بیہیو کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مارکیٹ والے آفٹر آل ہم لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں نا کہاں پیسہ لگائیں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے تو اسی طرح جو بلینز آف ڈالر اور ٹریلینز آف ڈالر فنڈ مینیجرز ہیں جو پیسہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں
یو ایس از گیونگ اس اینزائٹی اس میننگ دا ورلڈ اینزائٹی آن ٹو فرنٹس اے ٹو ڈے میٹنگ آف دا یو ایس فیڈرل ریزرو ول بگن سون اینڈ دس از دا لاسٹ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی ایف او ایم سی ایز وی کال اٹ میٹنگ ان دا کرنٹ فسکل ایئر اینڈ بفور ڈونلڈ ٹرمپ ول ٹیک چارج ایز دا 47th پریزیڈنٹ آف دا یو ایس ان جنوری 2025 دی ایف او ایم سی پروجیکشنز ول بی ریلیزڈ ٹمارو الانگ ود دا ڈیسیژن آن دا ریٹ کٹ سو ون از ایز یو جسٹ مینشن واٹ ول the president elect what will be his attitude what tariffs that is a big question mark I will come to know after he takes charge on 20th of January and which way people are saying he'll go full on now there're not going to be any half measures because he has his America first policy and this two day meeting of the US Fed Reserve your views on the
ek cheez yahan pe prakash ji jodna chahunga ki jaise trump ne jo indication diya hai bharat ko unhone tariff والے جو لسٹ بنائی ہے اس سے تھوڑا سا الگ رکھا ہے تو بھارت کے لیے تو تھوڑا راحت ہی ہوگی اس بات سے
ایکچولی ہم لوگ یہ کنٹری ورسز دیٹ کنٹری کو نہ دیکھ کے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نا ساری چیزیں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ساری ٹرانزیکشنل چیزیں ہوتی ہیں
جی
تو ابھی میں پیچھے ہمارے جو ودیش منتری ہیں ان کو سن رہا تھا ٹرمپ کی پالیسی پہ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ٹرانزیکشنل ہے یہ سارا کام پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ جو ہیں وہ بڑے ٹرانزیکشنل قسم کے آدمی ہیں وہ نیگوسیشن کرتے ہیں آپ نے مجھے کیا دیا میں نے آپ کو کیا دیا اگر آپ کے لیے امریکہ فرسٹ ہے تو میرے لیے انڈیا فرسٹ ہے بھائی ایسا تو نہیں ہے نہیں آپ کے لیے امریکہ فرسٹ ہے میرے لیے انڈیا فرسٹ ہے چلو مل کے بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں لیٹ اس ڈسکس یور انٹرسٹ اینڈ مائی انٹرسٹ اینڈ فائنڈ اے کامن گراؤنڈ तो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉमन ग्राउंड जो हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे. नहीं, ट्रंप साहब आ रहे हैं और एक मैसेज मैंने सुना वो थोड़े दिन पहले विदेश मंत्री का, उन्होंने कहा मैसेज हम ये देखना चाहते हैं कई ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट में, उसमें हम लोग आपके पार्टनर बन सकते हैं, विच इज अ विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए अच्छी चीज है.
जी, एक चीज और प्रकाश जी, जो हम रुपए की हालत देख रहे हैं लगातार कि उसके कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो कौन से ऐसे कारण हैं जो रुपए को स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे हैं?
नहीं, रुपया ऐसा नहीं है कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है. रुपया अच्छा खासा स्टेबल है, जो ऐसे कोई अफरा तफरी वाले नहीं है चेंजेस आते. कमजोर हो रहा है उसके कारण ये, अभी आपने जिक्र किया लालिमा जी ने कि ट्रेड डेफिसिट, तो जब ट्रेड डेफिसिट बड़ा होता है तो उसका रुपए में असर पड़ता है. फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, काफी सेलिंग हो रही है, तो वो जो नेट आउटफ्लोज हैं दे आर एक्सीडिंग नेट इनफ्लोज, तो डिमांड सप्लाई. डॉलर भी तो एक एसेट ही है ना, एसेट क्लास है अपने आप में, तो डॉलर की जब आरबीआई बीच बीच में आरबीआई अपने तरीके से उसको नजर बनाए रखता है, कहाँ जरूरत पड़ने पे बड़े स्मार्ट तरीके से इंटरवीन भी करते हैं ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी आए. जो नए गवर्नर साहब आए उन्होंने कहा स्टेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, फॉरेक्स स्टेबिलिटी, और थोड़ा बहुत अगर रुपया कमजोर होता भी है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी बात है. पॉलिटिकली पता नहीं कैसे हो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है कॉम्पिटेटिव बनते हैं उनसे.
राइट राइट. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. द लोकसभा हैज अप्रूव्ड द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2024-25. द गवर्नमेंट सॉट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट टू ऑथराइज ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर 87,762 करोड़ रुपीज. द हाउस ऑल्सो गेव इट्स appropriation bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of financial year 2024-25. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is the fastest growing economy in the world and it witnessed 8.3% average GDP growth in the last 3 years. She expressed hope that the economy will continue to be in a better shape in coming years. She said the government has increased capital expenditure to boost economy and over 11 lakh crore rupees budgetary allocation has been made in this year's budget. Countering opposition's allegations on rising inflation in the country, the finance minister said, headline, retail, food and fuel inflation have come down drastically in the NDA government in comparison to the previous UPA regime. She said the number of domestic active customers of LPG cylinders have improved considerably in the last 10 years, reaching to around 33 crore. She claimed that cylinder prices are far less in the country in comparison to neighboring countries. On the employment front, the finance minister pointed out that the unemployment rate has gone down from 6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24. How do you interpret? Long story.
Well, there's a speech by the finance minister in parliament, as you mentioned in your story. Essentially, she wanted to convey a very important message, which is that the economy, that our second quarter economy, we had a temporary blip. That's what she called it. The government calls it temporary blip because the GDP growth had come down to 5.4%. Now she's expecting, and we hope, because the government is privy to several data which we are not. So we have to share her optimism that this blip will be over and we will be back to a path which is solid growth, impressive growth. Between 6.5 to 7%, that is what most of the people are expecting, that India will be back to that kind of a growth trajectory in the short to medium term.
Right.
And that is the kind of message she was trying to give, that okay, several reasons were cited.
Yes.
For instance, the food inflation had got to do with the weather changes, some weather phenomena. And so these are all reasons which are seasonal factors. And the economy, she expected, and since the government has much more data points than data than we have, we need to share their optimism.
Yeah, fair enough.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है. लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं और किसानों की आय 2002-2003 की तुलना में 2115 रुपए से बढ़कर 2018-19 में 10218 रुपए प्रति माह हो गई है. उन्होंने बताया कि सरकार की 6 सूत्री कार्यनीति के अंतर्गत उपज में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, उपज के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना, कृषि में विविधता लाना और प्राकृतिक तथा कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना जैसे उपाय शामिल हैं. प्रकाश जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस खबर को, खासतौर से इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है तमाम उनकी समस्याओं को लेके, लेकिन दूसरी ओर सरकार बहुत सजग है और संवेदनशील है किसानों की स्थिति को लेके और उनको लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को लेके, तो ये जो 6 सूत्री कार्यनीति है इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं?
ये जो आपने जिक्र किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल कंजम्पशन जो हमारा किसान है जी. ना केवल वो प्रोड्यूसर है, वो बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है
जी.
तो वो प्रोड्यूसर भी है, उपभोक्ता भी है. तो सरकार को ये उनकी इनकम के लिए बढ़ाना प्रायोरिटीज हैं, स्कीम को लेना, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. अब मेन मुद्दा क्या है, मिनिमम सपोर्ट सरकार अनाउंस करती है, वो पूरी प्रोक्योरमेंट जो है, जितनी आप जितनी अवेलेबिलिटी है फसल की, वो सारी प्रोक्योरमेंट जो है आपको इंश्योर करनी पड़ेगी उनकी फसल खरीदी गई सही दाम पर. ये सारी स्कीम्स अगर उस तरफ बढ़ती हैं, जिससे, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनपुट प्राइस है, जो लागत है, उसको कम करना वाकई जरूरी है. क्योंकि आप कितना भी मर्जी वो बना लीजिए, बढ़ा लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर लागत ही कम नहीं होगी तो फिर तो आप बढ़ा.
लेकिन सरकार ने इसको काफी काम भी किया, एक फॉर्मूला बनाया, लागत की दृष्टि से ही समर्थन, न्यूनतम समर्थन.
आपकी बात सही है, लेकिन वो फिर सरकार का लिमिटेड बजट भी तो है ना. अगर अगर लागत को ही कम कर दिया जाए तो सरकार पे बजट भी कम, बर्डन भी कम होगा और किसान को भी फायदा होगा.
राइट, वेल, गुड न्यूज, more good news coming our way. India has become the third largest exporter of smartphones in the world, which was on the 23rd rank in 2019. The country's smartphone exports have also breached the 20,000 crore rupee mark in a single month in November 2024. Sharing a news article on social media platform, Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav lauded this achievement and termed it as making Bharat story. This achievement outshines production-linked incentive, that is the PLI scheme commitment to export 70-75% of production value in the financial year 2024-25. Yes, we were reading in the papers that iPhones are now being, 25% of the world's iPhones are going to be or are still being manufactured in India. This also kind of validates.
Actually, electronics, the entire sector, electronics, not only on iPhones, but the overall smartphone.
Yes.
India itself is a big consumer of smartphone, mind you.
Yes, yes.
So we are a big consumer of stock smartphones, and we are manufacturing them here. We are exporting them.
Yes.
And critical components we are sourcing from outside. The effort is to value add and those try and motivate people to come along with their manufacturing facilities for even manufacture of critical components. So electronics has been one of the focus areas for to give a boost to the manufacturing, the value added manufacturing.
Right.
The next level would be semiconductors, chip manufacturing.
Yes.
The entire न्यू एज टेक्नोलॉजीज, इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन.
पिछले सालों में सरकार ने काफी इसको प्राथमिकता भी दी है, जो असेंबलिंग मोबाइल की देश में हो, और जी
उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, ये अच्छी बात है. और वो ये एक तरह का आपको इंडिकेशन भी देता है कि अगर आप एक फोकस तरीके से किसी तरफ बढ़ते हैं, एक सेक्टर बाय सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, तो उसके नतीजे आते हैं आपके सामने.
एंड मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर व्हिच इज लॉन्ग टर्म विजन एक्चुअली आर स्टिल इन द पाइपलाइन.
यस यस, दे आर
इट्स इन द प्रोसेस.
यस, बट वी नीड टू एंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इफेक्टिवली एंड वी टेक इट टू अ लॉजिकल. द स्टोरी ऑफ द स्मार्टफोन शुड बी नाउ रेप्लिकेटेड इन द सेमीकंडक्टर, एंड दैट्स अ हाई स्टेक एरिया.
राइट,
बिग टेक्नोलॉजी हाई स्टेक एरिया.
ऑलमोस्ट एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक नाउ यूजेस सेमीकंडक्टर.
इट्स अ हाई स्टेक एरिया एंड आवर स्टेक्स आर मच मोर देन एनीथिंग एल्स.
जी,
और चलते हैं एक और अच्छी सकारात्मक खबर की ओर. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि भारत में न केवल ऊर्जा क्रांति हो रही है, बल्कि अब देश विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा की राजधानी बनने जा रहा है. नई दिल्ली में 5वें CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इस समय विश्व का सर्वाधिक संभावनाओं वाला देश है. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल और नवम्बर के बीच भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 15 GW की वृद्धि की है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 2 गुनी है. श्री जोशी ने साल 2030 तक 500 GW गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य पाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रकाश जी, क्या कहेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि देश हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है.
नहीं, हमारे को तो ईश्वर की कृपा है, इतना धूप मिलती है हमें और सूर्य भगवान की इतनी कृपा है, और उसको हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी. और सरकार की पॉलिसीज हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके सोलर एनर्जी प्लांट्स लगाने में, रूफ टॉप में हो रहे हैं, काफ़ी सब्सिडी दी जा रही है, और टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी के आइडिया है. और अब ये देखिए, इवन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ वी आर मूविंग अहेड इन दैट काइंड ऑफ डायरेक्शन. सो द एंटायर एनर्जी ट्रांजिशन, इफ यू रिकॉल आवर बजट फॉर 2024-25 एंड द इकोनॉमिक सर्वे, द एंटायर energy transition has been laid there, and this is a good thing. We are moving in that direction.
जी, और चलते हैं एशियाई बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर दिखाई दिया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.2%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% से अधिक गिरा. हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स भी लगभग 0.5% और जापान के निकेई में 0.24% की गिरावट दर्ज की गई. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान मिला जुला रुख दिखाई दिया. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.3% और जर्मनी के डेक्स में 0.1% की तेजी चल रही थी. उधर लंदन का फुटसी 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था.
Well, US stocks displayed mixed trend yesterday as investors remained cautious ahead of the US Federal Reserve interest rate decision tomorrow. The Nasdaq composite surged over 1.2%, closing at a record high led by mega cap technology shares, and the S&P 500 gained over 0.3%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average shed 0.25%. Let's move to oil. Oil prices dipped today as China's economic data resumed demand concerns. Brent crude was trading below $73.34 per barrel, declining over 0.7%. WTI crude also fell over 0.9% to trade at around $70.06 per barrel, according to latest reports.
और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 76,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 90,290 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.43% घटकर 76,788 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices extend losses for second straight session. Sensex closes at 80,684. Nifty sheds over 300 points. US Federal Reserve's meeting on rate cut decision to begin today. And crude oil prices slip. Brent crude trades at $73.34. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Amrish Saxena, signing off. Namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.